जीवन कहानी। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। डॉन रिडली की जुबानी। भाई डोनाल्ड रिडली एक वकील थे जिन्होंने 30 से भी ज्यादा सालों तक यहोवा के साक्षियों की वकालत की। उन्होंने डॉक्टरों और वकीलों को यह समझने में मदद दी कि हर किसी को बगैर खून इलाज करवाने का पूरा हक है। उन्होंने अमरीका की बड़ी बड़ी अदालतों में हमारे संगठन को कई मुकदमों में जीत दिलवाई। भाई डोनाल्ड रिडली के दोस्त प्यार से उन्हें डॉन कहते थे। वो मेहनती और नम्र स्वभाव के थे और उन्होंने संगठन के काम के लिए बहुत से त्याग किए। सन 2019 में भाई को पता चला कि उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी उनके शरीर में बहुत जल्दी फैल गई और 16 अगस्त 2019 को भाई की मौत हो गई। यह है भाई डोनाल्ड की कहानी।
मेरा जन्म 1954 में हुआ था। मैं अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में सेंट पॉल नाम के एक शहर में पैदा हुआ था। मेरा परिवार रोमन कैथोलिक था। हम लोग इतने अमीर नहीं थे लेकिन हमारे पास जरूरत की सारी चीजें थीं। मेरा एक बड़ा भाई था और 3 छोटे भाई बहन थे। मैं एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ता था। मैं चर्च में ऑल्टर बॉय था और पादरी की मदद करता था, लेकिन मैं बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मैं मानता था कि एक ईश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, पर चर्च से मेरा भरोसा उठ गया था। मैंने सच्चाई को जाना। मैं वकालत की पढ़ाई करने विलियम मिशेल कॉलेज ऑफ लॉ गया। जब मैं कॉलेज के पहले साल में था तो 2 यहोवा के साक्षी मेरे घर आए। उस वक्त मैं कपड़े धो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें किसी और दिन आने के लिए कहा। जब वो दोबारा मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे 2 सवाल किए। पहला, ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग पिसते रहते हैं और बुरे लोग ऐश करते रहते हैं, और दूसरा, हम खुश कैसे रह सकते हैं। उन्होंने मुझे सत्य जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है नाम की किताब दी और पवित्र शास्त्र का नई दुनिया अनुवाद भी दिया, जो हरे रंग की एक बहुत सुंदर बाइबल थी। मैं उनके साथ बाइबल अध्ययन करने के लिए भी राजी हो गया। मैंने बाइबल से जो सीखा उससे मेरी आंखें खुल गईं। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर का राज एक सरकार है जो इंसानों की सभी तकलीफें दूर कर देगी। मैंने सोचा, बात तो सही है, इंसानों की सरकारें पूरी तरह नाकाम हो गई हैं और उन्होंने हमें दुख दर्द के अलावा और दिया ही क्या है। सन 1982 की शुरुआत में मैंने अपना जीवन यहोवा को समर्पित किया। उसी साल सेंट पॉल सिविक सेंटर में राज की सच्चाई अधिवेशन हुआ था। मैंने वहां बपतिस्मा लिया। उसके अगले हफ्ते मैं दोबारा सिविक सेंटर गया। वहां मैंने वकालत की परीक्षा दी। अक्टूबर की शुरुआत में मुझे पता चला कि मैं पास हो गया हूँ, यानी अब मैं वकालत कर सकता हूँ। राज सच्चाई अधिवेशन में मेरी मुलाकात माइक रिचर्डसन से हुई। भाई ब्रुकलिन बेथेल में सेवा कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि अब हमारे मुख्यालय में कानून विभाग बनाया गया है। तब मुझे इथियोपिया के खोजे की वो बात याद आई जो प्रेषितों 8:36 में लिखी है। मैं सोचने लगा, क्यों न मैं भी कानून विभाग में काम करूं? मुझे अर्जी भरने से क्या बात रोक रही है? मैंने बेथेल सेवा के लिए अर्जी भर दी। मम्मी पापा इस बात से खुश नहीं थे कि मैं यहोवा का साक्षी बन गया हूं। पापा ने कहा, अपने करियर की सोचो, बेथेल में काम करके तुम कितने पैसे कमा लोगे? मैंने उन्हें बताया कि मैं वहां स्वयं सेवा करूंगा और मुझे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हर महीने एक छोटी सी रकम दी जाएगी, जैसे बेथेल में सेवा करने वालों को मिलती है। मैं तुरंत बेथेल नहीं जा पाया क्योंकि मैं कहीं और नौकरी कर रहा था। कुछ समय बाद 1984 में मैंने ब्रुकलिन में बेथेल सेवा शुरू की। मुझे कानून विभाग में काम करने के लिए कहा गया। उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अदालत में काम करके मुझे जो थोड़ा बहुत तजुर्बा मिला था वो आगे चलकर कितना काम आने वाला है। स्टैनली थिएटर की मरम्मत। नवंबर 1983 में संगठन ने स्टैनली थिएटर खरीदा। ये थिएटर न्यू जर्सी राज्य के जर्सी सिटी में था। भाइयों ने वहां बिजली का काम करने और नल साजी करने के लिए अर्जी भरी। भाइयों ने वहां के अधिकारियों से मिलकर उन्हें बताया कि हम स्टैनली थिएटर को यहोवा के साक्षियों का सम्मेलन भवन बनाना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। उस शहर के कानून के मुताबिक उपासना की जगह सिर्फ ऐसे इलाकों में हो सकती थी जहां लोग रहते हैं, लेकिन स्टैनली थिएटर बिजनेस इलाके में था। इस वजह से शहर के अधिकारियों ने मरम्मत करने की इजाजत नहीं दी। भाइयों ने अधिकारियों से अपील की, लेकिन उनकी अपील ठुकरा दी गई। बेथेल में सेवा करते हुए मुझे एक ही हफ्ता हुआ था कि संगठन ने इस मसले को सुलझाने के लिए संघीय जिला अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। मैंने 2 साल मिनेसोटा की सेंट पॉल संघीय जिला अदालत में काम किया था, इसलिए मैं जानता था कि ऐसे मुकदमे कैसे लड़े जाते हैं। हमारे एक वकील ने कहा, स्टैनली थिएटर में पहले भी जनता के लिए कई कार्यक्रम हुए हैं, यहाँ फिल्में दिखाई गई हैं और गीत संगीत के कार्यक्रम भी हुए हैं, तो फिर यहाँ धार्मिक कार्यक्रम क्यों नहीं रखे जा सकते। संघीय जिला अदालत ने इस मामले पर गौर किया और हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि साक्षियों को अपना धर्म मानने की आजादी है और जर्सी सिटी ने हम पर रोक लगाकर हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया है। अदालत ने जर्सी सिटी को आदेश दिया कि वो हमें मरम्मत करने की इजाजत दे दे। मैंने पहली बार देखा कि यहोवा कैसे संगठन के कानून विभाग के जरिए राज के काम को आगे बढ़ा रहा है। मुझे खुशी हुई कि मैं भी इस काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा सका। इजाजत मिलते ही भाइयों ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया। वहां बहुत सारा काम था, फिर भी 1 साल के अंदर सारा काम पूरा हो गया। फिर 8 सितंबर 1985 को जर्सी सिटी के हमारे नए सम्मेलन भवन में गिलेट की 79वीं क्लास के ग्रेजुएशन का कार्यक्रम रखा गया। कानून विभाग में भाई बहनों के साथ मिलकर यहोवा की सेवा करना मेरे लिए एक सम्मान की बात थी। बेथेल आने से पहले भी मैंने वकालत की थी, लेकिन जो खुशी मुझे यहाँ मिली वो पहले कभी नहीं मिली थी। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहोवा मुझे संगठन के लिए और भी कई मुकदमे लड़ने के मौके देगा। बगैर खून इलाज करवाने की लड़ाई। सन 1980 के दशक में साक्षी बगैर खून के इलाज नहीं करवा पाते थे। कई अस्पताल और डॉक्टर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें खून चढ़ा देते थे। गर्भवती बहनों को और भी ज्यादा परेशानी होती थी। जजों का मानना था कि बहनों को खून चढ़वाने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि अगर खून ना चढ़वाने की वजह से माँ की जान चली जाए तो उसके बच्चे को कौन पालेगा। बहन डेनिस निकेलो की बात लीजिए। 29 दिसंबर 1988 को बहन डेनिस ने एक बेटे को जन्म दिया। प्रसव के वक्त उसका बहुत सारा खून बह गया था और उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, 5 से भी कम। उसकी जान खतरे में थी, इसलिए डॉक्टर ने उससे खून चढ़वाने के लिए कहा। बहन ने इनकार कर दिया। अगली सुबह अस्पताल ने बहन को खून चढ़ाने के लिए एक जज से इजाजत मांगी। जज ने इजाजत दे दी, लेकिन ना तो कोई सुनवाई हुई और ना ही बहन निकेलो और उसके पति को इस बारे में कुछ बताया गया। बहन के पति और परिवार के लोगों ने खून चढ़ाने से मना कर दिया, फिर भी शुक्रवार 30 दिसंबर को अस्पताल ने बहन निकेलो को खून चढ़ा दिया। उसी शाम बहन के परिवार के कई लोगों को और 1-2 प्राचीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो बहन के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए थे ताकि उसे खून न चढ़ाया जाए। अगली सुबह यानी शनिवार 31 दिसंबर को यह खबर पूरे न्यूयॉर्क सिटी में और आसपास के शहरों में फैल गई। सोमवार सुबह मैंने एक ऊंची अदालत के जज मिल्टन मॉलन से बात की। मैंने उन्हें इस मसले की जानकारी दी और बताया कि पहले जज ने बिना किसी सुनवाई के खून चढ़ाने का आदेश दे दिया था। जज मॉलन ने कहा, शाम को मेरे दफ्तर आना, हम खुलकर बात करेंगे और देखेंगे कि इस मामले में क्या क्या कानून हैं। मैं उनसे मिलने गया और मेरे साथ कानून विभाग के निगरान भाई फिलिप ब्रमली भी आए। जज ने अस्पताल के वकील को भी बुलाया था। बात करते करते हमारे बीच गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि भाई फिलिप ने मुझे लिख कर दिया, थोड़े शांत हो जाओ। वो बहुत अच्छी सलाह थी, क्योंकि अस्पताल के वकील को गलत साबित करने के चक्कर में मैं भड़क गया था। लगभग एक घंटे बाद जज मौलन ने कहा, कल सुबह सबसे पहले कोर्ट में इसी मुकदमे की सुनवाई होगी। जब हम उनके दफ्तर से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल अस्पताल के वकील को अपनी बात साबित करने में बहुत मुश्किल होगी। मुझे ऐसा लगा जैसे यहोवा हमारी हिम्मत बंधा रहा है कि हम ये मुकदमा जीत जाएंगे। मैं ये देखकर दंग रह गया कि यहोवा कैसे अदना इंसानों से अपनी मर्जी पूरी करवा रहा है। हमने देर रात तक मुकदमे की तैयारी की और सोचते रहे कि हम कल उन्हें कौन सी दलीलें देंगे। अदालत ब्रुकलिन बेथल के पास ही थी, इसलिए कानून विभाग के भाई बहन चलकर वहां तक गए। चार जजों के सामने इस केस की सुनवाई हुई। फिर अदालत ने कहा कि बहन को खून चढ़ाना गलत था। अदालत ने बहन निकेलो के पक्ष में फैसला सुनाया। जजों ने यह भी कहा कि अगर एक मरीज राजी ना हो तो डॉक्टर उसे खून नहीं चढ़ा सकते, ऐसा करना उसके बुनियादी अधिकारों के खिलाफ होगा। इस घटना के कुछ समय बाद न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी अदालत ने भी यही फैसला सुनाया कि बहन निकेलो को बिना खून के इलाज कराने का हक है। इसके बाद मुझे अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी खून से जुड़े तीन और मुकदमे लड़ने का सम्मान मिला। मैंने बेथेल के दूसरे वकीलों के साथ मिलकर भी कई मुकदमे लड़े, जैसे तलाक, बच्चों की परवरिश करने के अधिकार और जमीन जायदाद के मुकदमे। कुछ और जानकारी। अलग अलग राज्यों की बड़ी अदालतों में जीत। सन 1989 में अर्नेस्टीन ग्रेगोरी के मामले में अमरीकी राज्य इलिनॉय के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर एक नाबालिग समझदार है तो वो खुद तय कर सकता है कि उसे कैसे इलाज करवाना है, और वो चाहे तो बगैर खून के इलाज करवा सकता है। सन 1989 में पब्लिक हेल्थ ट्रस्ट ऑफ डेड काउंटी बनाम वंस के मुकदमे में फ्लोरिडा के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बालिग जो समझदार है खुद ये तय कर सकता है कि वो खून चढ़वाएगा या नहीं। सन 1990 में फॉसमायर बनाम निकेलो के मुकदमे में न्यूयॉर्क राज्य की सबसे ऊंची अदालत यानी कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसला सुनाया कि हर बालिग को जो समझदार है ये फैसला लेने का हक है कि वो किस तरह का इलाज करवाएगा और खून लेगा या नहीं। सन 1996 में स्टैमफोर्ड अस्पताल बनाम वेगा के मुकदमे में कनेटिकट राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक माँ को जो यहोवा की साक्षी है ये तय करने का अधिकार है कि उसका इलाज कैसे किया जाए, वो चाहे तो खून चढ़वाने से इनकार कर सकती है। वापस लेख पर। शादी और परिवार। एक बार मेरी मुलाकात डेनिस नाम की एक बहन से हुई। उसका तलाक हो चुका था और उसके तीन बच्चे थे। वो नौकरी करने के साथ साथ पायनियर सेवा भी करती थी। मुझे इस बहन के बारे में एक बात अच्छी लगी कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, फिर भी वो यहोवा की सेवा करती रही। फिर 1992 में न्यूयॉर्क सिटी में ज्योतिवाहक जिला अधिवेशन में मैं डेनिस से मिला। वहां मैंने डेनिस से कहा कि मैं उसे और अच्छी तरह जानना चाहता हूं। एक साल बाद हमने शादी कर ली। डेनिस मेरे लिए यहोवा का एक तोहफा है। वो यहोवा से बहुत प्यार करती है और खुश मिजाज है। डेनिस और मैंने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया है। उसने हर पल मेरा साथ दिया है। जब हमारी शादी हुई तब डेनिस के बच्चों की उम्र 11, 13 और 16 साल थी। मैं एक पिता की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाना चाहता था। हमारे प्रकाशनों में सौतेले माता पिता के लिए जो हिदायतें दी गई हैं वो सब मैंने ध्यान से पढ़ी और उन पर अमल करने की कोशिश की। एक पिता की जिम्मेदारी निभाने में कुछ मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे मुझसे प्यार करने लगे और उनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। जब बच्चे अपने दोस्तों को घर लाते थे तो हमें भी अच्छा लगता था। इससे घर में चहल पहल रहती थी और हम भी उनके साथ मजे करते थे। सन 2013 में मैं और डेनिस अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करने के लिए विस्कॉन्सिन राज्य आ गए। लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि मैं अब भी बेथेल का काम कर सकता था। मुझसे कहा गया कि मैं एक स्वयंसेवक के तौर पर कानून विभाग में काम जारी रख सकता हूं। अचानक हालात बदल गए। सितंबर 2018 में मुझे गले में खारिश होने लगी और हर बार बोलने से पहले मैं गला साफ करने लगा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन वो नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दूसरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं नसों के डॉक्टर के पास जाऊं। जनवरी 2019 में नसों के डॉक्टर ने मुझे बताया कि शायद मुझे प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी यानी PSP नाम की बीमारी है। यह बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। 3 दिन बाद जब मैं बर्फ पर स्केटिंग कर रहा था तो मैं गिर गया और मेरी दाईं कलाई की हड्डी टूट गई। मैं सालों से स्केटिंग कर रहा था और इसमें माहिर था। इस हादसे के बाद मैं समझ गया कि अब मेरे शरीर के लिए पहले जैसा संतुलन बनाए रखना मुश्किल है। यह बीमारी बहुत तेजी से मेरे शरीर में फैलने लगी। ना तो मैं ठीक से बोल पा रहा था, न ठीक से चल पा रहा था और ना ही खाना निगल पा रहा था। मैं बहुत खुश हूं कि मैं एक वकील के नाते यहाँ के संगठन के कुछ काम आ सका ताकि राज के कामों को आगे बढ़ा सकूं। मुझे ऐसी पत्रिकाओं में लेख लिखने का मौका मिला जिन्हें डॉक्टर, वकील और जज पढ़ते हैं। मुझे दुनिया की कई जगहों में रखे सेमिनारों में भाषण देने का भी मौका मिला। वहां मैंने लोगों को समझाया कि क्यों यहोवा के साक्षी बगैर खून के इलाज करवाते हैं। मुझे यहोवा की सेवा में बहुत कुछ करने का मौका मिला है। फिर भी मैं वही कहूंगा जो लूका 17:10 में लिखा है, मैं एक निकम्मा दास हूं, मैंने बस वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। लेख समाप्त।